Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jayam Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Shtotarastha His Divine Grace Abhay Sarana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Shtotarastha His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai Jai Shri Shri Radha Krishna Gov Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Shri Mayapur Navdiv Dham Ki Jai Shri Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamai Jamunamai ki jai, Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai, Hitai Gaur Premanande Gaur Haribol, All glories to assembled devotees, All glories to assembled devotees, All glories to assembled devotees, All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Shiyamane Sosambandhe Ekasmin Bahubhirudha Chintamparam Jagamataha Sarashtra Purabandavaha Shiyamane Sosambandhe Ekasmin Bahubhirudha Chintam Param Jagan Mata Sarashtra Purabandavaha Shiyamane Sosambande Ekesmin Bahubhirudha Chintam Param Jagan Mata Sarashtra Purabandavaha Shiyamane Sosambande एकस्मिन् बहुविरुदा लगामार्दः नवच मताय शियमाणे कमजोर पड़ने पर स्वबंधने उसके अभिन्न मित्र एकस्मिन् अकेला बहु भी अनेक वीरों के साथ युधा युद्ध द्वारा चिंताम चिंता पराम अत्याधिक परम जगाम प्राप्त किया आर्तः दुखी होकर स सहित राष्ट्र राज्य के पूरा नगरी के बांधवः मित्र तथा संबंधी भाषांतर तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि इसे उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अंततः पांच फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। यह देखकर कि इसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उसकी नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। तात्पर्य, जीव को शारीरिक शरीर के भीतर निवास करता है और अंग शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र संज्ञा प्रदान की गई है, कोई मनुष्य अपने अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ सकता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्षों तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु उसके बाद नहीं। इसके बाद जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का गीत द्रष्टव्य है, रुद्धकाल आलोन जब सुख भागल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं और उस समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर योगिक अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्र तृप्ति में जीवन बिताया है, उनके लिए ध्यान बहकावा है, जो कि भगवता में 6 अध्याय में कहा गया है कि ध्यान धारणा कठिन होती है और उसे युवावस्था में सीखना होता है। ध्यान के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रियों से विमुख हो रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता। कभी कभी ऐसे ध्यान विधियां आध्यात्मिक ध्यान के लिए होती है। जीव रूपी राजा पुरंजन ने जीवन संघर्ष से उबकर अपने मित्र तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रदातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा. आप सब वैष्णव से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान वृंदावन चंद्र की प्रसन्नता के लिए और आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भागवतम कुछ चर्चा कर पाऊँ. शीयमाणेषु संबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां जगत्मार्तः सराष्ट्र पुर बांधवः. चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अंततः पांचों फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा. यह देखकर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उसकी नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित उठे. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी जो यह हमारा जो राजा पुरंजन की जो नगरी पे चंडवे का जो धाबा जब हुआ है, तब उसमें 720 सैनिक है, उसमें 365 पुरुष है, 365 स्त्रियां हैं. उसको रात्र और दिन की तुलना की गई है. तो यहाँ ये जो पांच फणों वाला जो नाग है उसको प्राणवायु की से तुलना की गई है. प्राणवायु जो है वो आत्मा का मित्र है. जो राजा पुरंजर है वो आत्मा है और उसका जो मित्र है ये प्राणवायु. इसलिए नॉर्मली आप देखेंगे आयुर्वेद में भी कुछ जब कुछ कुछ रोग होता है तो वो प्राणवायु को वो लोग ठीक करने का प्रयत्न करते हैं. प्राणवायु ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहता है. जब व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसका मतलब उसका प्राणवायु निकल गया है शरीर में से. 10 प्रकार का वायु होते, उसमें एक महत्व का वायु होता है, वो प्राणवायु होता है. तो यहाँ 720 दिन मतलब ये रात और दिन में ये जो प्राणवायु जो युद्ध कर रहा है, ये एनालॉजी में कि जो जीवात्मा यहाँ जैसे पूर्वात कह रहे कि ये शरीर में रहता है और ये उसकी सारी इंद्रियों के साथ वो स्ट्रगल मतलब वो संघर्ष करता रहता है. तो ये हर एक जीवात्मा की कथा है. ऐसा नहीं कि किसी के लिए अप्लाई नहीं है. ये हर एक व्यक्ति को पूर्वात कहते हैं प्रवचन में कि प्रकृति सबको चुपचाप बूढ़ा बना देती है और ऐसा कोई ये दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बूढ़ा नहीं बनेगा. आजर वो बूढ़ा बनेगा और उसके पहले चला जाएगा. दोनों में से कुछ तो मतलब हर एक को बूढ़ा तो बनना ही है. ये हम सब के लिए मतलब. तो यहाँ जो प्राणवायु जो पांच फन वाला जो सांप है सर्प है वो अभी युद्ध कर रहा है 720 महावीरों के साथ. तो प्रभुपाद कह रहे यहाँ कि आप कुछ समय तक युद्ध कर सकते हैं सारे लोगों के साथ. अब हर समय युद्ध नहीं, इतना क्या ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक युद्ध करते रहेंगे और उसमें जीतते रहेंगे, ऐसा भी होगा नहीं कभी. जैसे पूर्वात पहली लाइन में कह रहे हैं पहले लाइन में कि जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है. ये जो संघर्ष है अस्तित्व में जो शरीर में रहने का जो संघर्ष है वो उसका शुरुआत से है. ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु के समय या बुढ़ापे में होता है. ये व्यक्ति जब जीवात्मा का जैसे शरीर में जब शुरुआत होती है, जब गर्भ के अंदर से लेकर तक मरने तक शरीर छोड़ने तक उसका स्ट्रगल चलते रहता है. और ये जो 720 जो सैनिक है वो कभी रात्र कभी दिन, तो ये कभी मतलब ये 24 घंटा तो स्ट्रगल चलता रहता है. ऐसा नहीं कि कभी स्ट्रगल नहीं है, कभी होता है. वो हर बार स्ट्रगल उनका चलता रहता है. वो नॉर्मल कभी हारता है कभी जीतता है. और जब बुढ़ापा आता है तो वो हारते ही रहता है.
शुरुआत में कभी कभी वो ज्यादा जीतेगा, मगर अंत में वो पांच पड़ने वाले सर को हारना ही है। इसलिए यहां उनके जो सारे संबंधी सब वो चिंता में है। तो जैसे हम देखते हैं, तो छोटा बच्चा होता, जब उस, मैंने याद है कि हम जो साइकिल सीखे थे, चलाना सीखे थे, टू दो बाइसिकल था, तो सीखते समय हमारा बैलेंस नहीं होता है, शुरुआत में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे, थोड़ा सा चलेंगे फिर रुकेंगे, तो एक स्ट्रगल होता है साइकिल सीखने के लिए। बहुत बार तो गिरते हैं हम साइकिल चलाते चलाते, फिर थोड़ा समय के बाद फिर व्यक्ति उसको साइकिल चलाना आता है। उसी तरह जब ये जीवात्मा ये जब शरीर में जब आता है तो स्ट्रगल होते रहता है, वो बहुत बार उसको, और ये स्ट्रगल इतना होता है कि वो जूझता रहता है वो, और हम सबको उसका अनुभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कभी उसको कान दुखता है, कभी उसका दांत दुखता है, कभी उसको बुखार आता है, एक्चुअली ये सब उसका स्ट्रगल चल रहा है। प्राणवायु उसको ठीक करने का प्रयत्न करता है और स्ट्रगल वहां चलता है, उसका भी सिर दुखता है। तो सिर दुखता है तो आप हम सबका अनुभव होगा कि जब हमारा जब सिर दुखने लगता है तब व्यक्ति और कुछ सोच नहीं पाता है। जो सारी चेतना से ऊपर होते हैं उनके लिए अलग होती है, उनके बाद अलग होती है, मगर जो नॉर्मली जो कंडीशन सोल होता है उसके लिए एक बड़ा संघर्ष होता है कि उस सिर दुखने से कैसे बंद करे, वो अलग अलग प्रकार उपाय करते रहता है। वैसे हम देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार की बीमारी हमारे जन्म आती रहती है, कभी किसी का पैर दुखता है, कभी वीकनेस आता है, कभी किसी को पित्त होता है, मतलब ये एक आप देख आप लिस्ट बनाएंगे कभी, जो जीवात्मा का जो स्ट्रगल है ये भौतिक शरीर में, वो एक बड़ा एक बुक बन जाएगा। कुछ समय हजारों प्रकार की बीमारी है ये, और नॉर्मल तकलीफ तो अलग है, ये रात को भी होती है, कभी कभी दिन में भी होती है। रात को कोई बोला किसने बहुत मच्छर काट दिए तो नींद नहीं हुआ, तो एक प्रकार से एक स्ट्रगल ही है, फिर उसका दूसरा दिन चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो एक प्रकार से देखते हैं हम कि ये स्ट्रगल है जीवात्मा का। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को जब जन्म लेके आता है तो वो गूंगा रहता है, कभी कभी बहरा रहता है, कभी कभी वो उसको दिखता नहीं है, कभी कभी वो पैरालाइज होता है। तो वो प्राणवायु यहां काम नहीं कर रहा है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है मगर वो प्राणवायु इधर काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली देखा है तो प्रभुपाद लिखते हैं 34 स्कंद के 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में, जब दक्ष जो यज्ञ दक्ष माफी मांगते शिव जी से और फिर वापस यज्ञ जब शुरू करते तब विष्णु जी वापस प्रकट होते, तब वो वहां के जो डेमीगॉड्स जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो कहते हैं कि जीवात्मा का जो जो स्थिति है ये भौतिक जगत में वो बहुत दयनीय है। दयनीय का मतलब हमें आपको क्या होता है, दयनीय मतलब समझा, रोड पे जब जाते हम तो कभी देखा है कोई व्यक्ति होता है उसके कपड़े बहुत फटे होते हैं, उसके बाल ऐसे जटा बन गए होते हैं, उसके सिर के ऊपर ऐसे मच्छर घूम, कितने महीने से उसने स्नान नहीं किया, कभी उसको चलना नहीं आता है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसका कोई घर नहीं है, ठाव ठिकाना कुछ नहीं है, कभी कभी वो उसको चलना तो वैसे घसीट घसीट में, एक मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में आता था मेरे, तो एक व्यक्ति था वो ऐसे बहुत खराब, मतलब इतना कपड़े काले थे उसके, कई महीनों से नहाया नहीं होगा, तो ऐसे घसीट घसीट पर चलता था इधर कभी उधर, उसके पास ऐसे कुछ बैग में कुछ खाना रहता था, वो खाएगा कोई उसको पानी दे देगा, तो हमको थोड़ी दया आती, करे कैसे दयनीय अवस्था है। तो प्रभुपाद कह रहे कि ये जीवात्मा की दयनीय, हर एक जीवात्मा की दयनीय अवस्था है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति की दयनीय अवस्था है, उस हमें वो दिख रहा है और किसी को दिखता नहीं है, कोई अंधकार जो अज्ञान के अंधकार में किसको ये दयनीय समस्या में नहीं आती है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण कि हम सबकी अवस्था बहुत दयनीय है, जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनता नहीं तब तक, क्योंकि उसका स्ट्रगल इतना होता है। जैसे यहाँ वो परपट में प्रभात श्लोक भाषांतर में ऐसा लिखा है, जो समय है वो एक सांप के रूप में बैठा रहता है और वो ऐसा मौका देखता है कि वो जीवात्मा कैसे डसेगा, कभी उसको मृत्यु दे देगा। और उसके बाद कहते हैं कि वो जो जीवात्मा है वो बेचारा सुख के लिए इधर उधर भागते रहता है, जैसे कोई हिरण होता है जब रण प्रदेश में, वो उसको इतना प्यास लगा है तो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, लगता है उधर पानी है उधर पानी है। तो जीवात्मा का बोले कि ऐसा स्थिति जीवात्मा का कि वो भौतिक सुख के लिए वो अपने मिराज के पीछे भागता रहता है, उसकी दयनीय अवस्था है बोले, क्योंकि आप आनंद है ही नहीं और उसके पीछे भाग रहा है वो, और उसको कोई शेल्टर नहीं मिलता है। कहते वो ट्रांसलेशन में लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है, उसको कोई शेल्टर नहीं मिलता है, और लिखता है कि और वो और एक उसमें एक प्रॉब्लम उसमें यह है कि वो इज ओवर बर्डन विथ सो कॉल्ड ड्यूटीज, उसके बहुत सारे ड्यूटीज को कहेंगे हम कर्तव्य, कर्तव्य के उसकी उसके इतने इतने सारे कर्तव्य कि उसको पूरा सिर भारी हो गया है, इतने सारे कर्तव्य उसके, उसका संसार का कर्तव्य है, उनका देश का कर्तव्य है, उसकी सोसाइटी का कर्तव्य, इससे इतने सारे कर्तव्य होते उसको, तो वो कर्तव्य से वो व्यक्ति बेचारा बोझा लेकर घूमता रहता है और कहता है कि, और वो कह रहे हैं फिर वो जो देवता कह रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि ये लोगों कैसे उनका उद्धार होगा। मतलब सोचिए क्या लिख रहे हैं वो, डेमिगॉड्स लिख रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं वो कि वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू गेट शेल्टर फॉर योर लोटस फीट, ऐसा जो जीवात्मा है उसका कैसे होगा। तो पर्वत आत्मा लिखते हैं उसमें कि जीवात्मा का जो कंडीशन बड़ा दयनीय है, मगर उसके लिए एक ही होप है, वो कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भक्ति में आना। और कहते कि इसलिए जो भक्त होता है एक्चुअली वही वेलविशर होता है, बाकी और कोई वेलविशर होता नहीं है, उतना एक ही व्यक्ति जो है वो वेलविशर है जो भक्त है, क्योंकि उसको मालूम है कि जीवात्मा कैसे ये भौतिक भवबंधन से छूटकर भगवान के पास जा सकता है। तो यहाँ जो जो पांच फनों वाला जो सांप है वो अभी लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। सोचिए आप, हमने कभी कुछ फिल्म देखा होगा युद्ध के टाइम, युद्ध के टाइम का सीन बहुत कम होता है, थोड़ा इधर उधर मारा मार किया। अब सोचो कोई 100 साल तक युद्ध कैसे करेगा, सोचिए आप। यहाँ ये पांच फणों वाला जो जो सांप है जो हमारे शरीर में है, जो प्राणवायु है, वो कंटिन्यूसली युद्ध करते रहता है। प्रोबेबली देखिए हाउ लॉन्ग ही विल कंटिन्यू टू फाइट। जैसा जैसा समय बीतता है उसका शरीर क्षीण पड़ने लगता है। आप देखें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 10 साल में कोई किसका प्राणवायु खत्म हो जाएगा तो मर जाएगा, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, 50 साल के बाद तो धीरे धीरे कम हो ही जाता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं यहाँ कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तब उसको पाचन क्रिया ठीक से होती नहीं है, सुनने को नहीं आता है, दिखता नहीं है, नो बाल निकल गए, दांत निकल गए, तो ये अवस्था है। प्राणवायु न होने के कारण, प्राणवायु क्षीण पड़ने के बाद जो चंडवे के जो जो महावीर सैनिक है वो शरीर के ऊपर धाबा बोल रहे हैं और एक एक करके वो हमला करके उसको वहां वो शरीर को तहस नहस करते हैं। और एक समय ऐसा कि आता है कि 100 साल तक प्रबल लिखते कि वेल एंड गुड, मतलब उसका भाग्य है 100 साल तक जिया तो अच्छा है, मगर 100 साल जीने तक भी वो व्यक्ति एक प्रकार से निष्काम बन जाए, मतलब ऐसा कि उसका शक्ति नहीं बचता है। आपने कभी देखा 70-80 साल के कोई व्यक्ति को देखा आपने, व्यक्ति धीरे चलता है, सब कुछ उसका सब उससे पहले तो वो स्लो डाउन हो जाता है कि उसको कॉन्फिडेंस चलाता है वो ज्यादा फास्ट काम कर सकता है कि नहीं, और उसको ज्यादा वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं रहता है वो। ये मैं भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भक्त तो अपने एडवांस में ज्यादा कुछ करते हैं। हम देखते प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल, हमारे आचार्य ऐसे कि 70 साल में जितना उन्होंने किया मुझे लगता कोई 20 साल का जवान भी ऐसा कोई करेगा कोई। तो एक बार श्रुतिकीर्तिपुर ऐसे बोल रहे थे कि मैं उस समय 18-19 साल का था और मैं उस समय प्रभुपाद का पर्सनल सर्वेंट था, मैं प्रभुपाद का रोज मसाज करता था। प्रभुपाद मुझे बोलते थे कि उनका जब पीठ का जब मसाज करते थे तो प्रभुपाद बोलते थे कि आप मुझे जोर से आप मुझे मसाज कीजिए। मैं 17-18-19 साल का लड़का था और मैं इतना जोर से प्रेशर लगाता था प्रभुपाद को, मगर प्रभुपाद हिलते भी नहीं थे और मेरा मैं पसीना पसीना हो जाता था पूरा। तो ये भक्तों के लिए लागू नहीं, मैं ऑफकोर्स ये है जो हाँ अभक्तों के लिए लागू होता है कि जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है उसके उम्र के साथ साथ उसका जो साक्षात्कार है, उसका जो भगवत चेतना जो है, उसका भगवान के प्रति जो आकर्षण है जो बढ़ता है, उससे वो भक्त जितनी उसकी उम्र बढ़ती है उसका उतना वैल्यू बढ़ता रहता है। अदरवाइज जो बूढ़े लोग होते हैं जो भक्त नहीं है, आप उनको उनकी स्थिति जाके वो ज़्यादा देनी होती है, उनके घर में उनके बच्चे आजकल उनके घर में रखते नहीं है, रखते तो घर के बाहर रखते हैं। भागवतम लिखा है कि उनको एक कुत्ते के समान घर के बाहर रखते, बाहर एक ऐसा कॉट लगा देते वहाँ उसको रखते, घर में उनकी जो बहू होती है वो कुछ खाना ला के देती है और उसको ताने मार के जली जाती है। ये बहुत यह अवस्था सबकी होती है, मगर जो भक्त होते उनमें से थोड़े जो भक्त होते उनका यह अवस्था अलग होता है, क्योंकि उनका वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि उनका साक्षात्कार बढ़ता है, इसलिए उनको सब जगह से उनको बुलावा आता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ते उनको प्रचार के लिए सब लोग बुलाते रहते। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर तात्पर्य लिख रहे, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो क्या सोचता है कि उसकी धारणा ये होती कि बुढ़ापे में व्यक्ति सुख प्राप्त करेगा, मगर वो पॉसिबल नहीं क्योंकि उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है। नॉर्मली जवानी में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को लगाता है पैसे कमाने के लिए और पैसे कम इतना बहुत स्ट्रगल करता है, उस समय वो सुख प्राप्त नहीं करता है। और जब वो पैसा मिलता है तो बुढ़ापे में वही पैसा उसको अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए लगाता है, तो उसको वहां सुख नहीं उतना मिलता नहीं उसको सुख वहां। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं जैसे शिल भक्तिवेद ठाकुर को शिल प्रभात कोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वृद्धा काले आलोल सब सुख भागल। जैसे व्यक्ति जब वृद्ध काल आता है उसे सारा सुख भाग जाता है, भाग जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो चला जाता है, भाग जाता है, मतलब ऐसा गुम हो जाता है एकदम। और उसको वो सोचता है कि उस समय मैं भक्ति करूंगा। नॉर्मली सब जैसे कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है तो कहते हैं कि अरे ये उम्र है क्या ज्वाइन भक्ति करने की, बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। तो एक बार मैं गौरांग प्रभु प्रवचन सुन रहा था, प्रभु जी बहुत बार बोलते हैं, मगर मुझे अच्छा लगा ये। बोले एक बार ऐसा कि एक पिताजी आए अपने उनका बेटा ब्रह्मचारी बना था तो उनको बोलने आए कि ये क्या उम्र है क्या भक्ति करने की, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो गौरांग प्रभु ने ठीक है उसको छोड़ दो, आप आ जाओ, आप भक्ति करो, उनको छोड़ दो, वो उनको बुढ़ापे में बुलाऊंगा मैं। बोले नहीं ठीक है मेरा बेटा ही यहाँ ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता है, वो कहते हैं लोग कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, और यहाँ प्रभुपाद कह रहे कि जो नॉर्मली आजकल बाहर लोग सोचते हैं कि योगासन करेंगे, हम योगासन करके हम ध्यान धारणा करेंगे और फिर हमारे जो शारीरिक जो प्रॉब्लम उसको दूर करेंगे। एक्चुअली योगा का जो उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करना, आजकल ये बड़ा फैशन बन गया। ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ कि उनको लगता है कि योगासन करने से हमारा शारीरिक पावर बढ़ेगा, सेक्सुअल पावर बढ़ेगा, हम ज़्यादा इंद्रियुक्त कर पाएंगे, यू नो हमारा डाइजेशन पावर अच्छा बढ़ेगा। हम देखते हैं कि कुंजवारी मंदिर में भी वो सामने वाला जो रोड है, सुबह आप 5 बजे से लेकर 8 बजे तक देखते हैं आप, तो वहाँ सब बूढ़े लोग जॉगिंग करते रहते, उनको मालूम है कि अभी उनका समय आ गया है, तो उनको इंद्रियुक्त करना है, तो उनको कुछ तो अपना ऐसा कुछ शारीरिक ऐसा कुछ व्यायाम करना पड़ेगा जिससे वो इंद्रियुक्त आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ जो मन ये पॉसिबल नहीं, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि समझो किसी को ध्यान धारणा भी करनी है उसको यूथ मतलब युवा अवस्था से व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ योग धारणा है। क्योंकि हमारा सबका अनुभव होगा ये कि हम जब युवा अवस्था में होते हुए तभी भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, उस समय भी जब करने मुश्किल होती है, तो व्यक्ति जब पूरा जीवन इंद्रियुक्त करने के बाद वो योग साधना में बैठे उसका क्या हालत होगा सोचिए आप। भक्ति मार्ग तो इतना आसान है, व्यक्ति सब मतलब हाथ में माला लेकर माला करना है, उसको हरे कृष्ण को उसको फोकस करना है, उसको या अष्टांग योग कोई व्यक्ति करने का सोचेगा तो उसका कैसे हालत होगा सोचिए आप। जिसने इंद्रियुक्ति की उसने चाय छूटी नहीं है, कॉफी छूटी नहीं है, उसको अभी अचानक बंद कर दो आप, उसके लिए बड़ा एक शॉकिंग शॉक लगेगा उसको, मांस खाना छोड़ दो। तो जैसे कि श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के एक शिष्य जब लंदन गए थे, उनको बोला कि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है, आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, तो बोला इट्स इम्पॉसिबल लंदन में से कहा। तो उस तरह यहां भी जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर कोई इंद्रियुक्ति करेगा और उसके बाद बोलेगा अभी योग करना है मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद ये बहुत मुश्किल है, उसको करना है तो हमें जीवन के शुरुआत से, प्रहलाद महाराज तो कुमार अवस्था से बोल रहे, न तो क्या जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि जब बैंबू होता है, बैंबू जब वो गीला होता है तो उसको आराम से आप उसको बेंड कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, जैसे वो पका सूख जाता है आप उसको कितना भी बेंड करो वो टूट जाएगा मगर बेंड नहीं होगा वो। या फिर जब घड़े होता है, घड़ा जब कच्चा मट्टी का घड़ा होता है, उसको जब आप मट्टी का गोला होता है उसमें आप आकार तो कैसे भी आकार लग जाएगा आ जाएगा, मगर वही घड़े को आप उसको घड़े का आकार देने के बाद, उसको सुखाने के बाद, उसको भट्टी के अंदर रखने के बाद, फिर बाद में उसको बाहर निकालेंगे और फिर उसको आकार देंगे तो नहीं लगेगा, वो टूट जाएगा, उसका टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसको दूसरा आप आकर नहीं दे पाएंगे। उसी तरह व्यक्ति बुढ़ापे में वो योग साधना जैसे अष्टांग योग करना उसके लिए बड़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि, और दूसरा शिल प्रभु जी आगे कहते हैं कि जीवन के संघर्ष करते रहने के लिए ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं बन सकता, कभी कभी ऐसे ध्यान विधि आध्यात्मिक ध्यान के लिए हो जाती है। तो पूर्वत कहते हैं ऐसा ध्यान की जो विधियाँ हैं वो आध्यात्मिक जीवन में कभी हम यूज करते हैं, जैसे कभी रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम प्राणायाम कर सकते हैं हम जब के पहले, ये हम करते हैं, जो कोई कोई भक्त ऐसे करते हैं, मगर ये एडवांस एज में करना बड़ा मुश्किल है। जिसने जीवन भर भक्ति नहीं की उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारा बड़ा भाग्य है कोई कृष्ण भक्ति में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब लोग सबका वेलकम है, और वो इतना आसान कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि योग साधना करना उसको 8 घंटे ऐसा 8 नहीं ज्यादा ही बैठना होगा शायद मेरे मालूम नहीं, एटलीस्ट 10-12 घंटा तो ऐसा उसको ध्यान में बैठना होगा, है ना। आजकल तो हम यंग लोग भी चेयर पे बैठते तो बूढ़ों का क्या कहना है। नॉर्मल चीज है। तो हमारा आजकल खाना ठीक नहीं है, जो जो हवा जो प्रदूषण इतना हो गया कि हमारे शरीर में इतनी शक्ति बची नहीं है जिससे हम ये सब कर सकेंगे। इसलिए यहाँ बता रहा कि ये सब इसका कोई अर्थ नहीं है। और मगर एक चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भक्त होता है, हालांकि उसके जीवन में भी चल रहा है ये, उसके शरीर में भी 700 मतलब दिनों रात में प्राणवायु का स्ट्रगल चल रहा है, मगर भौतिकवादी व्यक्ति का जो जीवन है उसको कोई उपाय मालूम नहीं है। उसको लगता है कि मैं स्ट्रगल करूंगा शायद जीतूंगा नहीं जीतूंगा, उसका कुछ कन्फर्म नहीं है कुछ, उसका वो स्ट्रगल करते ही रहता है और एक दिन मर जाता है। मतलब एक जैसे कि कोई कीड़ों मकोड़े की मौत होती है, एनिमल बच्चा जैसे पशु मरते ऐसे मर जाते हैं। मगर भक्तों का कैसा होता है, भले वो स्ट्रगल करते हैं उनके जीवन में तकलीफें आएगी, मगर उनके पास एक ऑप्शन है भगवान का। भक्ति मार्ग के कारण जो भगवान की शरण लेने का जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद के रूप में। भक्तों को भी बहुत सारी तकलीफ आती रहती है, उनकी शारीरिक तकलीफ हम देखते हैं। जैसे उस दिन में प्रभुजी प्रवचन दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि भक्तियों ठाकुर का जीवन पूरा बोले कि ऐसा कभी समय नहीं था कि वो उनका शारीरिक कुछ तकलीफ नहीं थी भक्तियों ठाकुर का। एक दिन उनको वृंदावन जाना था तो भगवान को स्पेशली प्रार्थना करते कि प्लीज मुझे ये जो थोड़े दिन मैं वृंदावन जा रहा हूँ उस दिन तो मुझे कम से कम मेरा शरीर अच्छा रहे। तो वृंदावन जाते उनका शरीर एकदम अच्छा रहता है, फिर आने के बाद वो वापस बीमार पड़ जाते, कुछ ना कुछ उनको बीमारियां थी। तो हम देखते कि मगर हमेशा जो भक्त होते हालांकि वो उनका भी ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता रहता है, पर उनके पास भगवान के शरण का एक ऑप्शन होता है। हम देखते जो गजेंद्र था जो 8वें स्कंद में भी हम 8वां स्कंद पढ़ रहे, तो उसमें गजेंद्र जो थे वो उनके पिछले जीवन में इंद्रद्युम्न महाराज थे, और क्योंकि उन्होंने क्या पूर्व अभ्यास ने वो कहते प्रभुपाद लिखते उधर तात्पर्य में कि उन्होंने पूर्व अभ्यास किया था शास्त्रों का, उन्होंने पठन किया था और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया था उन्होंने। तो ये आप देखिए नॉर्मल कोई गजेंद्र होगा, समझो नॉर्मल कोई हाथी होगा, तालाब में गया किसी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, तो वो ऐसे कोई भगवान को नहीं बुलाएगा कभी। मैं स्पेशलिटी ये थी कि उसका कनेक्शन भगवान के साथ था। उसने भी कितना स्ट्रगल किया, 1000 साल स्ट्रगल किया उसने। 1000 साल करने के बाद उसको एकदम सोचे, मतलब 1000 साल के बाद उसको याद आया, स्टार्टिंग में याद नहीं आया उसको भगवान के बारे में, 1000 साल को याद आया। तो तुरंत उसने भगवान को बुलाया और एक सिंपल से कमल, जय श्री श्री राधा वृंदावन सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौरीताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उसने एक जस कमल उठाया और भगवान को अर्पण किया। 1000 साल बहुत बड़ा था, एटलीस्ट वी कैन इमेजिन व्हाट स्ट्रगल मींस। 1000 साल का जो संघर्ष क्या होता है हमको मालूम नहीं है। हमको कभी कभी कुछ तकलीफ है, 1-2-3 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल कुछ बढ़ेगी तो लगेगा बहुत तकलीफ हो रही है, मगर यहाँ 1000 साल तक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। अपना उसका पूरा पैर मगरमच्छ के मुंह के अंदर था और वो पानी के अंदर था। वो बोलते कि वो फॉरेन लैंड में था, क्योंकि जो हाथी है वो जमीन का प्राणी है और मगरमच्छ जल का प्राणी है। तो उसके लिए हाथ जो गजेंद्र था वो ज्यादा युद्ध नहीं कर पाया, उसका शक्ति क्षीण होते गया। तो हम इससे सीख ले सकते कि भले हमारा भी शक्ति क्षीण होने वाला है एक दिन, अभी हम 40 साल के 45 साल के, उसके बाद जब 50 साल के बाद ऊपर हो जाएंगे तब हमारा भी शक्ति क्षीण होने वाला ही है। और ऐसा हुआ कि हम फिर बाद में चल नहीं पाएंगे ज़्यादा, हम इधर ज़्यादा जितना अभी जो शारीरिक सेवा कर पा रहे वो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय तो हमें भगवान का जो भागवतम है, जो भगवान का हरिनाम है, उस समय उनका शरण लेना पड़ेगा हमको। मगर यहाँ जो गजेंद्र था उन्होंने भगवान का शरण लिया, तो ये हमारा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारा सौभाग्य है, हम भी उसी जो भौतिकवादी जीवात्मा के जैसे ही हम भी थे, मर उनकी कृपा से हमको आज भक्ति मार्ग मिला है, जिससे अभी कोई भी कहां भी कौन से भी जीवन में भक्ति में आने के बाद वो भगवान की शरण ले सकता है। और उसका जो चिंता है, जैसे कि यहाँ जो उसके जो मित्र है चिंता कर रहे थे कि अभी क्या होगा, ये अभी जो पांच हुड वाला जो सैनिक है वो शायद पांच हुड वाला जो सांप है अभी वो हार जाएगा तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये मित्र है तो वो सब चिंता में सब लोग रो रहे होंगे। मगर जब व्यक्ति जब कृष्ण भावना में आता है, जब भगवान का शेल्टर लेता है, तब उसको चिंता रहित हो जाती है, चिंता रहित होता है। चिंता ना रहिलो कहते हैं वैष्णव समय, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का शरण लेता है तो दुख दीरो गेलो चिंता ना रहिलो, तो व्यक्ति सही में वो भगवान का शेल्टर को महसूस करता है। और यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि द्रौपदी का भी, जो द्रौपदी आप देखेंगे जब उनको जो सभा असत सभा में बुला गया था, ऐसी सभा में जहाँ जो दुर्उत्कड़ा चल रहा था, तो उस स्थिति में उनको खींच के लगाया, उनको उनके बालों को घसीट के उनको लाया गया था, मतलब इतना खराब अवस्था था उनका उस समय, उनको लाया गया था। और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, आप देखते हैं दुशासन के सामने उन्होंने तो पहले सारे राजाओं को धृतराष्ट्र को भीष्म को विदुर को सबको पूछा ये क्या चल रहा है, धर्म सभा है क्या अधर्म सभा है, और इतना होने के बाद कोई उसका उत्तर नहीं दे पाया। और यहाँ फिर जो दुशासन था वो भगवान जो द्रौपदी की का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न करने लगा, वो अपने दोनों हाथों से वो बचाने का प्रयत्न कर रही थी। और ऐसे बताया कि दुर्योधन दुशासन के पास भी 1000 हाथी को बल था, 1000 10000 भी 1000 भी ज्यादा ही है, कुछ कम नहीं है। यहाँ जो द्रौपदी थी वो एक अबला नारी थी, स्त्री थी, उसमें तक इतना बल नहीं था, और ये एक क्षत्रिय राजा था, और ये समझो प्रयत्न करेगा वो जो अपने शक्ति से तो क्या कर पाएगा। और वो और द्रौपदी प्रयत्न कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए दोनों हाथों से, उसको लगा अभी कुछ नहीं, और तो एक हाथ ऊपर उठाया, फिर वो एक हाथ से भी अभी एक हाथ रखे कोई फायदा, तो दोनों हाथ जब उठाया जब भगवान को बुलाया, तो स्ट्रगल इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, मतलब जो संघर्ष जो है हमारे जीवन में सबके लिए कंपल्सरी है। मगर वो स्ट्रगल में भौतिकवादी क्या करता है और आध्यात्मिकवादी क्या करता है वो डिफरेंस है। हम भक्त और अभक्त में जो डिफरेंस यही होगा कि हम हमारे जब डेंजर में हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ गजेंद्र ने डेंजर के समय भगवान को पुकारा, इसलिए प्रभुपाद वो तात्पर्य में कहते हैं, इतना सुंदर तात्पर्य आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि एट एनी कॉस्ट वन शुड नॉट गिव अप चैंटिंग हरे कृष्णा, क्योंकि डेंजर के समय हरे कृष्ण मंत्र ही काम आने वाला है और कुछ काम आने वाला नहीं है। तो ये इतना सुंदर तात्पर्य आप उसको पढ़िए, बहुत एनकरेजिंग है। उसमें कहते भले कोई ड्यूटी उसमें उसका पतन भी हो जाएगा, मगर उसने जो भी मंत्र पाठ किए, उसने जो भी श्लोका पाठ किए, उसको अगले जन्म में उसको भगवान बराबर याद करेंगे। हालांकि उसने यही भगवतधाम जाने के यही जन्म में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, मगर नहीं हुआ तो भगवान उसको मदद करते हैं। मगर एट एनी कॉस्ट वन शुड नॉट गिव अप चैंटिंग हरे कृष्णा, बिकॉज वो डेंजर के समय वही काम आने वाला है और कुछ नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चंडवेग सॉरी जो पांच फणों वाला जो स्टाफ है वो थक गया है स्ट्रगल करते करते करते। एक्चुअली देखा जाए तो जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है और वो समझ में आता है उसको थक गया है, तो उसका वो भाग्य है, को समझ में आ रहा है। नॉर्मल लोगों को समझता नहीं कि मैं थक गया हूँ, वो अपना स्ट्रगल करते रहते एंड मोमेंट तक वो इतना कि वो डॉक्टर बोले कि इसका कुछ फायदा नहीं है, वो शरीर छोड़ने वाले तो भी उसको बोले इसको रखो, उसको इतना तकलीफ होने का उसको हाँ वो शरीर में रखने का प्रयत्न करते, मगर किसको समझ में आ गया कि मैं अभी थक गया हूँ, तो बड़ा भाग्य कि उसको समझ में आ गया तो वो भगवान का शरण ले सकता है। तो यहाँ अभी जैसे कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, जीवन रूपी राजा पुरंजर ने जीवन संघर्ष के उपकर अपने मित्रता संबंधी सहित दिव्य ध्यान की शरण ली, तभी वो लोग भगवान का शरण लेंगे। तो हम सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको भी ये मौका मिला है भगवान का शरण लेने का, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर श्रील प्रभुपाद फॉर दिस, क्योंकि हमारा जीवन पूरा वी हैव जस्ट चेंज, वी आर हमारा 180 डिग्री हमारा जीवन बदल गया है। अदरवाइज व्यक्ति स्ट्रगल करता रहेगा और उसको कुछ फायदा नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि द पोजिशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी इन दिस मैटर इज वेरी प्रिकेरियस, दयनीय अवस्था है। मन प्रभुपाद ने वो दयनीय अवस्था को भाग्यशाली अवस्था बना दिया हमारा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।